मई 2020 की प्रहरी दुर्ग। अध्ययन लेख 19। इस लेख का अध्ययन 6 से 12 जुलाई के दौरान किया जाएगा। विषय, अंत के समय में उत्तर का राजा। ये लेख दानियल 11 के 40 पर आधारित है, जहां लिखा है, अंत के समय में दक्षिण का राजा उत्तर के राजा से भिड़ेगा। गीत 150। अपने बचाव के लिए यहोवा की खोज करें। लेख की एक झलक। दानियल ने उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो आज भी पूरी हो रही है। हम इस बात के सबूत साफ देख सकते हैं, लेकिन हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है? इस भविष्यवाणी को ठीक ठीक समझना क्यों जरूरी है? पैराग्राफ 1। सवाल, बाइबल की भविष्यवाणियों से हम क्या जान सकते हैं? बाइबल से हम जान सकते हैं कि यहोवा के लोगों के साथ बहुत जल्द क्या होने वाला है। इसकी भविष्यवाणियों से पता चलता है कि बहुत जल्द हम कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं देखने वाले हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी से हम जान सकते हैं कि दुनिया की कुछ ताकतवर सरकारें जल्द ही क्या करेंगी। ये भविष्यवाणी दानियल के अध्याय 11 में लिखी हुई है। इसमें दो राजाओं के बारे में बताया गया है जो एक दूसरे से लड़ते हैं। एक को उत्तर का राजा कहा गया है और दूसरे को दक्षिण का राजा। इस भविष्यवाणी की ज्यादातर बातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बाकी बातें भी जरूर पूरी होंगी। पैराग्राफ 2। सवाल, उत्पत्ति 3:15 और प्रकाशित वाक्य 11:7 और 12:17 में बताई किन बातों को ध्यान में रखकर हमें दानियल की भविष्यवाणी का अध्ययन करना चाहिए? दानियल के अध्याय 11 में दी गई भविष्यवाणी को सही सही समझने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी, वो ये कि इसमें बताया गया उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा सिर्फ उन शासकों और सरकारों को दर्शाते हैं जिन्होंने उस देश पर राज किया जहां यहोवा के ज्यादातर लोग रहते थे या उन पर जुल्म किया था। दुनिया की जनसंख्या की तुलना में यहोवा के लोगों की गिनती तो हमेशा से कम रही है, फिर क्यों दुनिया की सरकारों ने उन पर जुल्म किए हैं? इसकी वजह यह है कि शैतान और उसकी दुनिया यहोवा के लोगों का नामोनिशान मिटा देना चाहते हैं। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच दुश्मनी पैदा करूंगा, वो तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को घायल करेगा। और प्रकाशित वाक्य 11:7 में लिखा है, और जब वो गवाही दे चुके होंगे तो वो जंगली जानवर जो अथाह कुंड से बाहर निकला था उनसे लड़ेगा और उन पर जीत हासिल करेगा और उन्हें मार डालेगा। और 12:17 में लिखा है, और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के बाकी बचेवों से युद्ध करने निकल पड़ा जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और जिन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला है। दानियल की उस भविष्यवाणी को सही सही समझने के लिए हमें एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये कि इस बारे में बाइबल की दूसरी भविष्यवाणियों में क्या बताया गया है। अगर हम दूसरी भविष्यवाणियों पर भी गौर करेंगे तो ही हम दानियल की इस भविष्यवाणी को ठीक ठीक समझ पाएंगे। पैराग्राफ 3। सवाल क, इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? सवाल ख, अगले लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? ऊपर बताई बातों को ध्यान में रखकर हम दानियल 11:25-39 पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि 1870 से लेकर 1991 तक उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा ने किन हुकूमतों को दर्शाया। हम ये भी देखेंगे कि इस भविष्यवाणी की कुछ आयतों का हम पहले जो मतलब समझते थे वो क्यों सही नहीं है और उनका सही मतलब क्या है। अगले लेख में हम दानियल 11:40-12:1 पर चर्चा करेंगे और उन आयतों का सही मतलब जानेंगे। हम देखेंगे कि उन आयतों में 1991 से लेकर हरमगिदोन तक के समय के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। इन दो लेखों की तैयारी करते वक्त इस लेख के साथ दिया चार्ट भी देखिए ताकि आप इस भविष्यवाणी को समझ सकें। चार्ट का शीर्षक है, उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा में तकरार। मगर हम ये कैसे जान सकते हैं कि भविष्यवाणी में बताए गए दो राजा किन्हें दर्शाते हैं? आइए सबसे पहले इसी बात पर गौर करें। उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा को हम कैसे पहचान सकते हैं? पैराग्राफ 4। सवाल: उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा ने जिन हुकूमतों को दर्शाया उनमें कौन सी तीन बातें मिलती जुलती थीं? शुरू में उत्तर के राजा का मतलब वो हुकूमतें थीं जो इसराइल देश के उत्तर में राज करती थीं। दक्षिण के राजा का मतलब वो हुकूमतें थीं जो इसराइल देश के दक्षिण में राज करती थीं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? दानियल से एक स्वर्गदूत ने कहा था, मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि तेरे लोगों पर यानी इसराइलियों पर क्या बीतेगी। दानियल 10:14। ईस्वी सन 33 के पिंतेकुस तक पैदाइशी इसराइली ही परमेश्वर के लोग थे, लेकिन उसके बाद से यहोवा ने जाहिर किया कि यीशु के वफादार चेले उसके लोग हैं। इसलिए दानियल अध्याय 11 की भविष्यवाणी की ज्यादातर बातें पैदाइशी इसराइलियों के बारे में नहीं बल्कि मसीह के चेलों के बारे में हैं। अलग अलग दौर में उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा ने अलग अलग हुकूमतों या सरकारों को दर्शाया, लेकिन जब भी ये साफ नजर आया कि उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा कौन है तो उनमें कुछ बातें मिलती जुलती थीं। पहली बात, इन हुकूमतों ने उस देश पर राज किया जहां परमेश्वर के बहुत से लोग रहते थे या उन पर जुल्म किया। दूसरी बात, इन हुकूमतों ने परमेश्वर के लोगों के साथ जो सुलूक किया उससे पता चलता है कि उन्हें यहोवा से नफरत थी। तीसरी बात, दोनों राजाओं ने जिन हुकूमतों को दर्शाया वो एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं। पैराग्राफ 5। सवाल: दूसरी सदी से लेकर 1870 तक क्या कोई उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा था? समझाइए। दूसरी सदी के दौरान बहुत से झूठे मसीही सच्चे मसीहों के संगठन में घुस आए। वो झूठी शिक्षाएं सिखाने लगे, इसलिए समय के गुजरते लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को भूल गए। उस समय से झूठे मसीहों की गिनती जंगली पौधों की तरह बढ़ने लगी, इसलिए ये जानना मुश्किल हो गया कि कौन सच्चे मसीही हैं। दूसरी सदी से लेकर 1870 तक धरती पर परमेश्वर का कोई संगठन नहीं था। ये एक बहुत ही खास जानकारी है। इससे पता चलता है कि दूसरी सदी से लेकर 1870 तक जिन राजाओं और सरकारों ने हुकूमत किया उनमें से कोई भी उत्तर का राजा या दक्षिण का राजा नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि उन सदियों के दौरान परमेश्वर के लोगों का कोई समूह या संगठन नहीं था जिस पर वो हमला करते। फुटनोट: इस कारण से हम कह सकते हैं कि ईस्वी सन 270 से 275 के दौरान रोमी सम्राट ऑरिलियन उत्तर का राजा नहीं था, और ईस्वी सन 267 से 272 तक रानी जनोबिया दक्षिण का राजा नहीं थी, जैसा कि हम पहले मानते थे। और दानियल की भविष्यवाणी पर ध्यान दें, किताब के अध्याय 13 और 14 में भी बताया गया था। फुटनोट समाप्त। लेकिन 1870 के बाद की कुछ हुकूमतों को उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? पैराग्राफ 6। सवाल: यहोवा के लोगों का संगठन फिर से कब तैयार होने लगा? समझाइए। सन 1870 से यहोवा के लोगों का एक संगठन तैयार होने लगा। उसी साल चार्ल्स टी रसल और उनके कुछ साथी मिलकर बाइबल का अध्ययन करने लगे। वो उस दूत की तरह काम करने लगे जिसके बारे में मलाकी ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मसीहा का राज शुरू होने से पहले रास्ता तैयार करने का काम किया। इस तरह यहोवा के लोगों का एक संगठन फिर से उभर कर आया जो उसकी मर्जी के मुताबिक सेवा कर रहे थे। क्या उस दौरान ऐसी कुछ विश्व शक्तियां थीं जिन्होंने बाद में परमेश्वर के लोगों पर जुल्म किए? आइए जानें। दक्षिण का राजा कौन है? पैराग्राफ 7। सवाल: पहले विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण का राजा कौन था? सन 1870 के आते आते ब्रिटेन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। उसी के पास सबसे ताकतवर सेना थी। दानियल की भविष्यवाणी में बताया गया था कि एक जानवर का छोटा सा सींग बाकी तीन सींगों को उखाड़ देगा। ब्रिटेन साम्राज्य ही वो छोटा सींग था जिसने फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स को हरा दिया। इस तरह पहले विश्व युद्ध के दौरान यही साम्राज्य दक्षिण का राजा था। उसी दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया और ब्रिटेन से दोस्ती करने लगा। पैराग्राफ 8। सवाल, आखिरी दिनों की शुरुआत से लेकर अब तक कौन दक्षिण का राजा रहा है? पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर दूसरे देशों से युद्ध किया और वो दोनों बहुत ताकतवर बन गए। उस समय ब्रिटेन और अमेरिका की जोड़ी ब्रिटेन अमेरिकी विश्व शक्ति बन गई। जैसे दानियल ने भविष्यवाणी की थी, इस राजा ने यानी ब्रिटेन अमेरिकी विश्व शक्ति ने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना खड़ी कर ली थी। दानियल 11:25। आखिरी दिनों की शुरुआत से लेकर अब तक यही विश्व शक्ति दक्षिण का राजा बना हुआ है, मगर इस दौर में उत्तर का राजा कौन रहा है? कुछ और जानकारी। भविष्यवाणियों में ब्रिटेन अमेरिकी विश्व शक्ति को कैसे दर्शाया गया है? दक्षिण के राजा यानी ब्रिटेन अमेरिकी विश्व शक्ति को बाइबल की भविष्यवाणियों में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, जैसे लोहे और मिट्टी के पैर, दानियल 2:41-43, एक डरावने जानवर के सिर से निकला सींग, दानियल 7:7-8, जंगली जानवर का सातवां सिर, प्रकाशित वाक्य 13:1, दो सिंगों वाला जंगली जानवर, प्रकाशित वाक्य 13:11-15, झूठा भविष्यवक्ता, प्रकाशित वाक्य 19:20। वापस लेख पर। उत्तर का राजा कौन है? पैराग्राफ 9। सवाल क, किस साल उत्तर का एक नया राजा उभर कर आया? सवाल ख, दानियल 11:25 की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? जिस साल भाई रसल और उनके साथियों ने बाइबल का अध्ययन करने के लिए एक समूह बनाया, उसके अगले साल यानी 1871 में उत्तर का एक नया राजा उभर कर सामने आया। वो कौन था? वो जर्मनी था। सन 1871 में विल्हेल्म प्रथम जर्मनी का पहला सम्राट बना। उसी साल उसने ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी का पहला चांसलर बनाया। फुटनोट, सन 1890 में जर्मनी के राजा विल्हेल्म द्वितीय ने बिस्मार्क को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। फुटनोट समाप्त। उस साल बिस्मार्क ने कई इलाकों को मिलाकर एक किया, फिर उन सब इलाकों से मिलकर जर्मन साम्राज्य बन गया। अगले कुछ सालों के दौरान जर्मनी ने अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कुछ देशों पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करने लगा। दानियल 11:25 में लिखा है, वो ताकत और हिम्मत जुटाएगा और एक विशाल सेना लेकर दक्षिण के राजा पर हमला करने आएगा। दक्षिण का राजा एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना के साथ युद्ध की तैयारी करेगा। वो खड़ा नहीं रह पाएगा क्योंकि वो उसके खिलाफ साजिशें रचेंगे। जर्मनी ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली और अपनी नौसेना इतनी बढ़ा ली कि ब्रिटेन के बाद उसी की सेना सबसे ताकतवर बन गई। जर्मनी अपनी इस विशाल सेना को लेकर पहले विश्व युद्ध में दुश्मनों से लड़ा था। पैराग्राफ 10। सवाल, दानियल 11:25-26 की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? ये बताने के बाद कि उत्तर का राजा यानी जर्मन साम्राज्य एक ताकतवर सेना खड़ी करेगा, दानियल ये भी बताता है कि उस साम्राज्य का और उसकी सेना का क्या होगा। वो बताता है कि उत्तर का राजा खड़ा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं खड़ा रह पाएगा? क्योंकि लोग उसके खिलाफ साजिशें रचेंगे, उसके साथ शाही खाना खाने वाले ही उसे गिरा देंगे। दानियल 11:25-26। उत्तर के राजा के साथ शाही खाना खाने वाले किन्हें दर्शाते हैं? इसे समझने के लिए ध्यान दीजिए कि दानियल के जमाने में राजा की सेवा करने वाले राज दरबारी भी शाही खाना खाते थे। दानियल 1:5। इससे पता चलता है कि उत्तर के राजा के साथ शाही खाना खाने वाले जर्मन साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को दर्शाते हैं, जैसे सम्राट के सेनापति और सेना के बड़े बड़े अधिकारी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि उनकी वजह से बाद में जर्मनी के सम्राट की हुकूमत गिर गई। फुटनोट, जैसे उन्होंने सम्राट की मदद करना छोड़ दिया, युद्ध में हुए नुकसान के बारे में गुप्त जानकारी दूसरों को दे दी और सम्राट को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। फुटनोट समाप्त। दानियल ने बताया कि ये साम्राज्य बाद में गिर जाएगा और ये भी बताया कि जब वो दक्षिण के राजा से युद्ध करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। उसने कहा, उत्तर के राजा की सेना का सफाया कर दिया जाएगा और बहुत से लोग मार डाले जाएंगे। दानियल 11:26। ये भविष्यवाणी पहले विश्व युद्ध के दौरान पूरी हुई। उस युद्ध में जर्मनी की सेना का सफाया हो गया और बहुत से लोग मार डाले गए। उस युद्ध में जितने लोग मारे गए उतने पहले कभी नहीं मारे गए थे। पैराग्राफ 11। सवाल, उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा ने क्या किया? दानियल 11 के 27 और 28 में उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जो पहला विश्वयुद्ध होने से पहले घटी थीं। वहां लिखा है कि उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा एक ही मेज पर बैठकर एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। उसमें यह भी बताया गया है कि उत्तर का राजा खूब सारा माल जमा करेगा। ये दोनों बातें सच हुईं। जर्मनी और ब्रिटेन ने एक दूसरे से कहा कि वो शांति चाहते हैं, मगर ये एक झूठ था। इसीलिए 1914 में युद्ध छिड़ गया और उत्तर के राजा जर्मनी ने वाकई खूब सारा माल बटोर लिया था। सन 1914 के आते आते वो ब्रिटेन के बाद दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। फिर दानियल 11 के 29 में और 30 की शुरुआत में जो लिखा है वो भी पूरा हुआ। उत्तर के राजा जर्मनी ने दक्षिण के राजा ब्रिटेन से युद्ध किया, मगर जर्मनी हार गया। दोनों राजा परमेश्वर के लोगों पर हमला करते हैं। पैराग्राफ 12। सवाल, पहले विश्व युद्ध के दौरान उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा ने क्या किया? सन 1914 से दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा और उन दोनों ने परमेश्वर के लोगों को सताया। मिसाल के लिए, पहले विश्वयुद्ध के दौरान जर्मन सरकार और ब्रिटिश सरकार ने उन साक्षियों को सताया जिन्होंने युद्ध में हथियार उठाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका की सरकार ने उन भाइयों को जेल में डाल दिया जो प्रचार काम की अगुवाई करते थे। इस तरह प्रकाशित वाक्य 11 के 7 से 10 में दी गई भविष्यवाणी पूरी हुई। पैराग्राफ 13। सवाल, सन 1930 के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उत्तर के राजा ने क्या किया? सन 1930 के बाद के सालों में और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उत्तर के राजा जर्मनी ने परमेश्वर के लोगों को बहुत बेरहमी से सताया। जब जर्मनी में हिटलर की नाज़ी हुकूमत शुरू हुई तो उसने और उसके लोगों ने साक्ष्यों का काम बंद करा दिया। इन विरोधियों ने सैकड़ों साक्ष्यों को मार डाला और हजारों को यातना शिविरों में भेज दिया। दानियल ने पहले ही बताया था कि ऐसी घटनाएं होंगी। उत्तर के राजा ने पवित्र स्थान को दूषित कर दिया और नियमित बलियां बंद कर दीं। कैसे? उसने प्रचार काम बंद करा दिया, जिस वजह से यहोवा के लोग उसके नाम के बारे में सरेआम दूसरों को बता नहीं पाए। दानियल 11:31। जर्मनी के नेता हिटलर ने तो कसम खा ली थी कि वो जर्मनी से यहोवा के लोगों का नामो निशान मिटा देगा। उत्तर का एक नया राजा। पैराग्राफ 14। सवाल, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद कौन उत्तर का राजा बन गया? समझाइए। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार ने उन बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया जो पहले जर्मनी के थे। सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों ने भी नाजियों की तानाशाही हुकूमत की तरह यहोवा के लोगों पर बहुत अत्याचार किया, क्योंकि वो सिर्फ उसकी उपासना करते थे। इस तरह सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्र उत्तर का नया राजा बन गए। पैराग्राफ 15। सवाल, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर के राजा ने क्या किया? दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद उत्तर के नए राजा सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों ने परमेश्वर के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। प्रकाशित वाक्य 12 के 15 से 17 में इन जुल्मों की तुलना नदी से की गई है। उत्तर के राजा ने प्रचार काम पर रोक लगा दी और हजारों साक्षियों को देश निकाला देकर साइबेरिया भेज दिया, जहां जीना बहुत मुश्किल था। देखा जाए तो जब से आखिरी दिन शुरू हुए हैं तब से उत्तर का राजा यहोवा के लोगों पर जुल्म करता रहा और ये दिनों दिन बढ़ता गया, मगर वो हमारे काम को कभी पूरी तरह बंद नहीं करा सका। फुटनोट, जैसे दानियल 11 के 34 में बताया गया था, उत्तर के राजा के इलाकों में रहने वालों को कभी कभी जुल्मों से थोड़ी राहत मिली। मिसाल के लिए, जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया तो उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत मिली। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 16। सवाल, सोवियत संघ ने दानियल 11 के 37 से 39 की भविष्यवाणी कैसे पूरी की? दानियल 11 के 37 से 39 में लिखा है, वो अपने पिताओं के ईश्वर की कोई कदर नहीं करेगा, ना ही औरतों की ख्वाहिश की या किसी और देवता की परवाह करेगा। वो खुद को सबसे ऊंचा उठाएगा, इसके बजाय वो किलों के देवता की महिमा करेगा। ऐसे देवता को सोना चांदी, कीमती रत्न और मनभावनी चीजें चढ़ाएगा जिसे उसके पिता नहीं जानते थे, और ऐसा करके उसकी महिमा करेगा। वो एक पराये देवता के साथ मिलकर मजबूत से मजबूत गढ़ों के खिलाफ कदम उठाएगा। जो उसे मानते हैं उनकी वो बहुत बड़ाई करेगा और उन्हें बहुतों पर राज करने का अधिकार देगा और दाम लेकर उनमें जमीन बांट देगा। जैसे इस भविष्यवाणी में बताया गया था, उत्तर के राजा ने अपने पिताओं के ईश्वर की कोई कदर नहीं की। ये हम कैसे कह सकते हैं? सोवियत संघ ने धर्मों को ही मिटा देने की कोशिश की। उसने उन धर्मों का दबदबा खत्म करने की कोशिश की जो पिताओं या पुरखों के जमाने से थे। मिसाल के लिए, 1918 में ही सोवियत सरकार ने स्कूलों को ये सिखाने का हुक्म दिया कि कोई ईश्वर नहीं होता। उत्तर के इस राजा ने किलों के देवता की महिमा कैसे की? सोवियत संघ ने खूब सारा पैसा लगाकर अपने सैनिकों की गिनती बढ़ा ली और हजारों परमाणु हथियार बनाए ताकि अपनी सत्ता मजबूत कर सके। देखते ही देखते उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा दोनों ने घातक हथियारों का भंडार जमा कर लिया। अब उनके पास अरबों लोगों को मार डालने की ताकत थी। दोनों दुश्मन मिल गए। पैराग्राफ 17। सवाल, उजाड़ने वाली घिनौनी चीज क्या है? हालांकि उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, फिर भी उत्तर के राजा ने एक अनोखा काम करने के लिए दक्षिण के राजा का साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर एक उजाड़ने वाली घिनौनी चीज खड़ी की। दानियल 11 का 31। वो चीज है संयुक्त राष्ट्र। पैराग्राफ 18। सवाल, संयुक्त राष्ट्र को उजाड़ने वाली घिनौनी चीज क्यों कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र को घिनौनी चीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी दुनिया में शांति लाने का दावा करता है, जबकि ये काम सिर्फ परमेश्वर का राज कर सकता है। भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि यह घिनौनी चीज उजाड़ने वाली है। ये सही बात है क्योंकि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र ही सभी झूठे धर्मों का नाश कर देगा। कुछ और जानकारी। उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा में तकरार। 1, आयतें प्रकाशित वाक्य 11 का 7, 12 का 13, 17 और 13 का 1 से 8 और 12। भविष्यवाणी, जंगली जानवर 3000 साल से इंसानों पर राज कर रहा है। अंत के दिनों में इसका सातवां सिर घायल हो जाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है और पूरी धरती उस जंगली जानवर के पीछे हो लेती है। शैतान इस जानवर के जरिए बचे हुए अभिषेक जनों से युद्ध करता है। पूर्ति, जलप्रलय के बाद यहोवा का विरोध करने वाली सरकारों ने राज करना शुरू किया। जलप्रलय के हजारों साल बाद पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। बाद में जब अमेरिका उसके साथ मिल गया तो वो फिर से मजबूत हो गया। खासकर अंत के समय में शैतान सभी सरकारों के जरिए परमेश्वर के लोगों पर जुल्म कर रहा है। 2, आयतें दानियल 11 का 25 से 45। भविष्यवाणी, अंत के समय में उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। पूर्ति, ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन अमेरिका के बीच लड़ाई हुई। सन 1945 में सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्र उत्तर का राजा बने। सन 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। कुछ समय बाद रूस और उसके मित्र राष्ट्र उत्तर का राजा बने। तीन आयतें, यशया 61 का 1, मलाकी 3 का 1 और लूका 4 का 18। भविष्यवाणी, मसीहा का राज शुरू होने से पहले यहोवा अपने दूत को भेजेगा ताकि वो रास्ता तैयार करे। ये दूत दीन लोगों को खुशखबरी सुनाएगा। पूर्ति, 1870 से भाई रसल और उनके साथी बाइबल का गहराई से अध्ययन करने लगे ताकि जाने कि बाइबल में कौन सी सच्चाइयां दी गई हैं। सन 1881 में उन्होंने इस बात को समझा कि वो जो सीख रहे हैं वो दूसरों को भी बताना जरूरी है। उन्होंने ऐसे लेख प्रकाशित किए जैसे आवश्यकता है 1000 प्रचारकों की और प्रचार के लिए अभिषिक्त। चार आयतें, मत्ती 13 का 24 से 30 और 36 से 43। भविष्यवाणी, एक दुश्मन गेहूं के खेत में जंगली पौधों के बीज बो देगा। उन पौधों को कटाई के समय तक गेहूं के साथ साथ बढ़ने दिया जाएगा। इस बीच जंगली पौधे इतने बढ़ जाएंगे कि गेहूं नजर नहीं आएगा। कटाई के समय गेहूं को जंगली पौधों से अलग किया जाएगा। पूर्ति, 1870 से सच्चे और झूठे मसीहों के बीच फर्क साफ नजर आने लगा। अंत के समय में सच्चे मसीहों को झूठे मसीहों से अलग करके मसीह मंडली में इकट्ठा किया जाता है। पांच आयतें, दानियल 2 का 31 से 33 और 41 से 43। भविष्यवाणी, लोहे और मिट्टी के पैर एक ऐसी मूरत के हैं जो अलग अलग धातुओं से बनी है। पूर्ति, मिट्टी उन आम लोगों को दर्शाती है जिन पर ब्रिटेन और अमेरिका राज करते हैं। ये लोग इस विश्व शक्ति के खिलाफ बगावत करते हैं जिस वजह से इसकी लोहे जैसी ताकत कमजोर पड़ जाती है, यानी ये विश्व शक्ति अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाती। छह आयतें, मत्ती 13 का 30, 24 का 14 और 45 और 28 का 19 और 20। भविष्यवाणी, गेहूं यानी सच्चे मसीहों को गोदाम में यानी सच्ची मसीह मंडली में इकट्ठा किया जाएगा। विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास को घर के कर्मचारियों के ऊपर ठहराया जाएगा। राज की खुशखबरी सारे जगत में सुनाने का काम शुरू होगा। पूर्ति, 1919 में विश्वासयोग्य दास को परमेश्वर के लोगों पर ठहराया गया। तब से बाइबल विद्यार्थी प्रचार काम जोर शोर से करने लगे। आज यहोवा के साक्षी 200 से ज्यादा देशों में प्रचार करते हैं और 1000 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल के प्रकाशन तैयार करते हैं। सात आयतें, दानियल 12 का 11 और प्रकाशित वाक्य 13 का 11, 14 और 15। भविष्यवाणी, दो सिंगों वाला जंगली जानवर लोगों से कहेगा कि वो दूसरे जंगली जानवर की मूरत बनाएं जिसके सात सिर हैं। दो सिंगों वाला जानवर दूसरे जंगली जानवर की मूरत में जान फूंक देगा। पूर्ति, ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति ने राष्ट्र संघ को बनाने में पहला कदम उठाया। दूसरे राष्ट्र भी इस संगठन से जुड़ गए। बाद में उत्तर का राजा भी राष्ट्र संघ से जुड़ गया, मगर वो सिर्फ 1926 से 1933 तक इस संघ का सदस्य रहा। लोग मानते थे कि राष्ट्र संघ दुनिया में शांति लाएगा, जबकि ये काम सिर्फ परमेश्वर का राज कर सकता है। बाद में लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी यही मानने लगे। आठ आयतें, दानियल 8 का 23 और 24। भविष्यवाणी, एक खूंखार राजा बड़े ही अनोखे तरीके से तबाही मचाएगा। पूर्ति, ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति ने बहुत से लोगों को मार डाला और काफी तबाही मचाई। मिसाल के लिए, दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने एक ऐसे देश में दो परमाणु बम डाले जो ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। इस बम विस्फोट से इतनी तबाही हुई जितनी की पहले कभी नहीं हुई थी। 9 आयतें, दानियल 11 का 31 और प्रकाशित वाक्य 17 का 3 और 7 से 11। भविष्यवाणी, सुर्ख लाल रंग का एक जंगली जानवर जिसके 10 सींग थे अथाह कुंड से बाहर निकलेगा वो आठवां राजा होगा। दानिय्येल किताब में इस राजा को उजाड़ने वाली घिनौनी चीज कहा गया है। पूर्ति। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ मिट गया। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र को खड़ा किया गया। राष्ट्र संघ की तरह संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी माना जाता है कि ये शांति लाएगा, जबकि ये काम परमेश्वर का राज करेगा। भविष्य में संयुक्त राष्ट्र धर्मों का नाश कर देगा। 10 और 11 आयतें, पहला थिस्लुनीकियों 5:3 और प्रकाशित वाक्य 17:16। भविष्यवाणी, दुनिया के नेता शांति और सुरक्षा का ऐलान करेंगे। 10 सींग और जंगली जानवर वेश्या का नाश कर देंगे। इसके बाद राष्ट्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। पूर्ति, राष्ट्र शायद दावा करेंगे कि वो दुनिया में शांति और सुरक्षा लाने में कामयाब हो गए। इसके बाद वो सभी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं झूठे धर्मों का नाश कर देंगे। इस तरह महासंकट शुरू हो जाएगा। महासंकट तब खत्म होगा जब हर्मगिदोन में दुनिया के बाकी हिस्से का नाश कर दिया जाएगा। 12 आयतें, यहेजकेल 38:11-14-17 और मत्ती 24:31। भविष्यवाणी, गोग परमेश्वर के लोगों पर हमला करेगा। इसके बाद स्वर्गदूत चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। पूर्ति, उत्तर का राजा और दुनिया की बाकी सरकारें परमेश्वर के लोगों पर हमला करेंगी। गोग का हमला शुरू होने के कुछ समय बाद बचे हुए अभिषेक जनों को स्वर्ग ले लिया जाएगा। 13 आयतें, यहेजकेल 38:18-23, दानिय्येल 2:34, 35, 44 और 45, प्रकाशित वाक्य 6:2, 16:14 और 16, 17:14 और 19:20। भविष्यवाणी, सफेद घोड़े का सवार गोग और उसकी सेना का नाश करेगा और इस तरह अपनी जीत पूरी करेगा। जंगली जानवर को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। बड़ी मूरत चूर चूर कर दी जाएगी। पूर्ति, परमेश्वर के राज का राजा यीशु परमेश्वर के लोगों को बचाएगा। यीशु 144,000 जन और स्वर्गदूत राष्ट्रों के उस गठबंधन का नाश कर देंगे जो परमेश्वर के लोगों पर हमला करेगा। इस तरह शैतान की दुनिया का अंत हो जाएगा। वापस लेख पर। इतिहास की यह जानकारी क्यों जरूरी है? पैराग्राफ 19 और 20। सवाल क, इतिहास की यह जानकारी रखना क्यों जरूरी है? सवाल ख, अगले लेख में किस सवाल का जवाब दिया जाएगा? इतिहास की इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम समझ सकते हैं कि 1870 से 1991 तक उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बारे में भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि इन राजाओं के बारे में आगे जो बताया गया है वो भी जरूर पूरा होगा। सन 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया था, तो फिर आज उत्तर का राजा कौन है? इस सवाल का जवाब अगले लेख में दिया जाएगा। आपका जवाब क्या होगा? किन 3 बातों को ध्यान में रखने से हम जान पाएंगे कि उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा कौन है? सन 1870 से 1991 तक उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा कौन थे? इतिहास की इन बातों को जानना क्यों जरूरी है? गीत 128, हमें अंत तक धीरज रखना है। लेख समाप्त।